سلام خواتین و حضرات، چینل پہ واپس آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور دل کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے سنی لیا ہوگا کہ 10 جون کو فائنلی نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور بجٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگلا ایک سال پاکستانیوں کے لیے جنرلی کیسا ہے۔ اوریجنلی اس بجٹ نے 5 جون کو اناؤنس ہونا تھا، جو کہ کل کی تاریخ تھی، اور میں نے اسی وجہ سے پچھلے ہفتے زیادہ ویڈیوز نہیں کی تھیں کیونکہ میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ بجٹ آ جائے گا اور پھر ہم اس کو آرام سے ڈیٹیل کے اندر کانٹیکچولائز کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اگلا ایک سال پاکستانیوں کے لیے ایگزیکٹلی کیسا ہوگا۔ لیکن ہمیں کچھ آلریڈی بجٹ آنے سے پہلے ڈائریکشن نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ بارہا یہ بات کر رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا بڑا کنٹرول ہے، آئی ایم ایف بڑی مشکلات ایڈ کر رہی ہے، ہمارے پاس زیادہ اسپیس نہیں ہے کہ ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ ساتھ ہی ظاہر ہے میڈیا میں بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی بڑا ٹف بجٹ آئے گا اور لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی اور بڑی مشکلات بڑھیں گی۔ تو آلریڈی وی ہیو این انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئیڈیا۔ ظاہر ہے اس میں جو پرو گورنمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی ریلیف آنے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اناؤنسمنٹس کچھ ایسی ہوں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ جی دیکھیں ذرا ہم نے 2% یہاں پہ کم کر لیا، 5% وہاں پہ بڑھا دیا، اور آپ کو یہ آئیڈیا دلانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر جائیں گے، فرسٹ پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ کیا واقعی ریلیف پاسبل بھی ہے اور بجٹ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں ایز انڈیویجولس ایز ویل ایز اوور آل جو سوسائٹی ہے ہماری، اب وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، نیٹ پازیٹیو آئے گا یا نیٹ نیگیٹو آئے گا ان ٹرمز آف آور اسٹینڈرڈ آف لیونگ، آور بائنگ پاور، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور ساتھ ہی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیکسز جو ہیں اب وہ ایک اب ریالٹی بن چکی ہے، تو اس کے اوپر اب ہمیں ٹیکس چوری سے ہٹ کے ٹیکس آپٹیمائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کی ہم تھوڑی سی اسٹریٹجیز کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ عجیب و غریب سی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو پاشا ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن، جس کا کام ہے کہ وہ اوور آل آئی ٹی اور ڈیجیٹل انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرے، اس کو وہ سپورٹ کرے، اس کو گرو کرائے، تو جیسے کہ تمام پاکستان میں رینٹ سیکرز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنا کام کرتے ہیں، جیسے ہی وہ تھوڑے بابو بن جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی بے شک اگر ان کو پوری انڈسٹری کو انڈر دا بس تھرو کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں۔ تو آلریڈی ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی جو ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو گئی ہیں وہ یہ گئی ہیں کہ جی آپ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگائیں، ہمیں آپ ٹوٹل 0.25% نیٹ ریونیو والی ریلیف دیتے ہیں، لیکن جو انڈیویجول ریموٹ ورکرز ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں اور ان سے آپ ٹیکس لے لیں۔ تو اب ایگزیکٹلی اس کا کیا مطلب ہے، اگر آپ ریموٹ ورکر ہیں تو آپ کے اوپر کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں، اگر آپ فری لانسر ہیں تو کیا آپ کے اوپر ٹیکس بڑھنے والا ہے، کیا حالات ٹائٹ ہونے والے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے بہت ریئل چانسز ہیں، تو اس میں آپ کے پاس بچنے کے کیا طریقے ہیں، اس طریقے سے وداؤٹ بریکنگ دا لا آپ اپنے ٹیکسز کو آپٹیمائز کر کے اپنی ویلتھ میکسیمائز کر سکتے ہیں، اپنی ارننگز میکسیمائز کر سکتے ہیں اور اپنی لائبلٹی منیمائز کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، سبسکرائب آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں کرتے، براہ کرم سبسکرائب ضرور کریے گا۔ میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے 400,000 سبسکرائبرز کو فائنلی کراس کرنا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا، تو اب میں تھوڑا سا ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ کرم ایک بٹن دبا دیں، مجھے کانفیڈنس بڑا ملتا ہے۔ بٹ نن دا لیس آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا، اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جی جو ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، بہت سارے نئے ٹیکسز لگ جائیں گے، آئی ایم ایف ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے دو اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ نیٹ جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان نیٹ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، کیا وہ انف ہے فار پاکستان؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس سرٹن نمبرز ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو رفلی اراؤنڈ 10.5% ہے، انڈیا کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11.5% ہے، جو اگر آپ فار ایسٹ ایشین جو مڈل انکم اکانومیز ہیں اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ 18-19% پہ بھی چلا جاتا ہے، اگر آپ کوریا اور جاپان کی طرف جائیں گے تو وہاں 25-30% ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ جو ہے نا پورے جی ڈی پی کا جو حصہ ہے وہ ٹیکس کی مد میں گورنمنٹس لے لیتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس سے وہ رینج آف سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چکر رہنا گیا، اس کے اوپر ایک ٹگ آف وار بھی چلتی رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہمیں اچھی سروسز نہیں دیتے، دوسرے اینڈ کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ ٹیکس دیں گے تو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے۔ تو ایک تو تھریڈ یہ ہے کہ جی ایز اے ہول پاکستان کو ایٹ اینی گیون ٹائم اپنا ٹیکس بڑھانا ہے، اپنی ٹیکس کی کلیکشن بڑھانی ہے نیٹ کے اوپر، ابھی میں نیٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ہم گلوبل ایوریج یا ریجنل ایوریج کو دیکھیں تو ہماری وہ ٹیکس کلیکشن کافی کم ہے، اور جو ہم کوالٹی آف سروس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کنسیڈرنگ وی آر دا 5th largest کنٹری ان دا ورلڈ، ہمارے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں، تو اس میں ہمیں ٹیکس کلیکشن کو ڈیفینیٹلی بڑھانا ہوگا۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹارگیٹ دیتا ہے جی 17-18% پہ آپ نے ایونچولی جانا ہے، یعنی کہ آج جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے اس ٹیکس کلیکشن کو ہم نے ڈبل کرنا ہے، جو کہ مجھے نہیں معلوم کیسے ہوگا، بٹ اگین وہ ایک لانگ ٹرم آپ کا پلان ہے۔ نارملی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر سال ٹارگیٹ بڑھائی جا رہا ہے اور وہ 0.2-0.3% آپ سے جو ہے نا بڑھا کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکس کلیکشن آپ کی بہتر ہو۔ یہ تو آپ کا ایک تھریڈ ہو گیا۔ اب جو دوسرا تھریڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ ڈسٹریبیوٹڈ کیسے ہے، کیا ہم सबसे इक्वली एक सिमिलर अमाउंट का टैक्स ले रहे हैं, क्या हम मार्जिनली डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कितनी पैदावार है, किसकी कितनी वेल्थ है, उसके हिसाब से हम टैक्स ले रहे हैं, या हम डिस्प्रोपोर्शनेटली टैक्स ले रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि आसानी से टैक्स दे देगा उसको हम थप्पड़ लगा के 4 गुना एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं, जो थोड़ा सा भी हमें तंग करता है वो घूम घुमा लेता है उसको हम कहते हैं कि यार चलो ठीक है तुम जाओ और टैक्स बेशक ना दो। तो जो दूसरे वाला थ्रेड है उसके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है। अगेन, पहला थ्रेड ये है कि टैक्स बढ़ाना है, ओवरऑल बढ़ाना है, मुल्क के लिए बढ़ाना है, तो मैं अगर शोर डालूंगा तो मैं टैक्स बढ़ाने पे शोर नहीं डालूंगा, क्योंकि आज हो सकता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसको मैं सपोर्ट ना करता हूं, कल को मेरी सपोर्ट की गवर्नमेंट आ जाएगी। और मैंने पिछले 10-15 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स होते देखे हैं कि जिसमें एक गवर्नमेंट होती है जो कि आपकी सपोर्ट की होती है, वो जो भी करती है आप उसको डिफाइन करने और उसकी एक्सप्लेनेशन देने आ जाते हैं, सडनली दूसरी गवर्नमेंट आती है वो आपके खिलाफ होती है, आप उसकी उन्हीं चीज़ों को जो है ना अटैक करना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल प्राइसेस फॉर एग्जांपल, जब पीटीआई ने बढ़ाई तो पीएमएलएन के लोग जो है वो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी देखो ज़रा इतनी महंगी कर दी, डॉलर के रेट के ऊपर उन्होंने आके पॉलिटिक्स की। अब जब पीएमएलएन कर रही है, खैर पीटीआई तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपोजिशन में भी नहीं है और एज सच वो बेचारे वो इधर उधर हो गए, लेकिन अगर आप उनके ट्विटर पे जाएं तो वो बेचारे छोटी छोटी आवाज़ के अंदर कुछ ना कुछ अगर वो शो डाल रहे हैं तो वो यही डाल रहे हैं कि देखो जरा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, बिजली इतनी महंगी होगी। तो इट्स द सेम थिंग, एट द एंड ऑफ द डे जब हमने पाकिस्तान के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करनी है, हमने वापस सिस्टम को नॉर्मलाइज करना है, तो चीज़ें महंगी होंगी, उसके ऊपर मैं शोर नहीं डाल सकता। जो दूसरा थ्रेड है ना, जहाँ पर आप बेसिकली कर ही रहे हैं कि आपको नज़र आ गया जी सैलरीड क्लास जो है ना वो बेवकूफ़ है, वो सारे के सारे थोड़ी सी ज़्यादा फन्ने खान बनने लगे थे, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो ये सवाल भी करना शुरू कर देते हैं, ऊपर से ये जो है ये आके अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ये इतने आसानी से अपने आप को गुलाम भी नहीं बना लेते, तो इनको तो पहले निचोड़ो ना। और ये सारे कंसोलिडेटेड भी नहीं है, ये सारे के सारे शहरी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो इनके लिए इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, तो इनके ऊपर सबसे पहले जो है ना आके हैमर गिरती है। और सैलरीड क्लास का टैक्स ऑलरेडी आपको पता है पिछले 2-3 साल के अंदर बढ़ता गया है। आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रख सकें। यही वजह है कि पिछले 5 साल के अंदर मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है इन बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड्स एंड हेल्पिंग देम क्रिएट वैल्यू ऑफ ओवर $50 million। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो करना चाहते हैं, या आप एक फ्रीलांसर एजेंसी चला रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं $10,000 के रेवेन्यू से $100,000 के रेवेन्यू में कैसे जाऊं, तो आपको एक पर्सनल ब्रांड की ज़रूरत है जिसके अंदर आप अपनी थॉट लीडरशिप दिखा सकते हैं, आप एक फॉलोइंग क्यूरेट करके एक इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी दुनिया आपको सीरियसली लेती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में, या आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार जो मैं करता हूँ उसको पर्सनल ब्रांड की जरूरत है या नहीं, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्विज डिजाइन किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर योर प्रोफाइल कैन बी अ गुड फिट फॉर ए सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड। लिंक मैंने नीचे डाल दी है, कॉस्ट आपको कोई भी नहीं है, छोटा सा फॉर्म है, लेकिन हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपके प्रोफेशनल करियर को स्काई रॉकेट कर दे। खैर, आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। लास्ट 1 ईयर के अंदर सैलरीड क्लास ने 500 अरब रुपया टैक्स की मद में दिया है। 5 साल पहले पूरी सैलरीड क्लास ने 100 अरब दिया था, पिछले 5 साल के अंदर हमने 5 गुना उस टैक्स में इजाफा किया है। बाकी सारा का सारा टैक्स कलेक्शन लार्जली स्टैटिक रही है। जो आपकी दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शन हो रही है वो भी अगेन, क्योंकि आप जो मेजर बड़े ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपका सारा ब्लैक का पैसा पार्क हो रहा है, या आपका अमीर आदमी जो है ना वो ऑफ द टेबल सारा का सारा काम कर रहा है, उसको तो हम पकड़ नहीं सकते। तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, हम जाके कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, हमने GST 18% कर दिया, हमने पेट्रोल के ऊपर लेवी ठीक ठाक बढ़ा दिया। अब उससे हो क्या रहा है, अमीर आदमी तो ऑलरेडी जाहिर है वो टैक्स चोरी कर रहा है बैठा हुआ, तो वो अगर उसको पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ रहा है नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपनी जो मेन इनकम टैक्स है वो तो दे नहीं रहा, पेट्रोल के ऊपर मार्जिनली जो थोड़ा बहुत उसकी कंजम्पशन का टैक्स लग रहा है वो लग रहा है। इसी तरीके से कंजम्पशन के ऊपर उसको अगर कोई टैक्स देना है ठीक है वो दे देगा, ऑल दो उस पर भी उसको मसला नहीं है, वो तो वैसे ही बाहर से जाके शॉपिंग करता है लंडन वंडन से, तो उसको पाकिस्तान की 18% की टैक्स ही क्या पड़ी हुई है, वो तो जो सुबह शाम की उसकी अशियाएँ जो वो खाता है वो उसके लिए बहुत चिल्लू भर है उसकी नेट वेल्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर 18% वो जो टैक्स देता है वो उसके लिए इररिलेवेंट है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपकी सैलरीड क्लास है जो ऑलरेडी डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई टैक्स दे रही है, उसको अब 18% GST भी ठीक ठाक पड़ता है, उसको पीछे जो है ना फ्यूल का भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, तो वो तो बेचारा बिल्कुल ही जलील हो चुका है। अच्छा, मीनवाइल जो आपका सारा का सारा पैसा है ना, जो कि आप लेफ्ट राइट इधर उधर से कमाते हैं, वो आप जाके एग्रीकल्चर का पैसा शो करके आप उस पैसे को वैसे भी वाइट कर लेते हैं, अदरवाइज भी आप उसको ज़मीनों में पार्क कर लेते हैं, आप उसको हवाला हुंडी के थ्रू दुबई भेज देते हैं, आप उसको पाकिस्तान से किसी तरह निकाल देते हैं, तो आप उसके ऊपर टैक्स बचा लेते हैं जो आपके जितने भी अमीर लोग हैं, और ख़ासकर जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, जिसमें जो शुगर माफिया वाले आपके सारे ये तरीन्स हो गए या शरीफ्स हो गए या ये जरदारीज़ हो गई, 6-8 फैमिलीज़ हैं जो आपकी शुगर को चलाती हैं। अच्छा, शुगर का भी एक बड़ा क्यूरियस केस है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट बार बार ये बोलते हुए नज़र आ रही है कि जी IMF का बड़ा प्रेशर है, IMF का बड़ा प्रेशर है। अच्छा, IMF का बड़ा प्रेशर है, वो आम आदमी के ऊपर तो बहुत प्रेशर है कि यार हमें ना सैलरी के ऊपर भी टैक्स बढ़ाना है, हमें पेट्रोल के ऊपर भी बड़ा टैक्स रखना है। लेकिन आप इसके ऊपर एक रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डालूं। IMF ने एक्सप्लिसिटली बोला कि जी शुगर को डीरेगुलेट करें, क्योंकि शुगर जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ाहिर एक नेसेसिटी की चीज़ है। तो उसमें आपने 6-8 खानदानों को आपने लाइसेंस दिया हुआ है, अच्छा वो अपनी मर्जी से आते हैं, वो आके शुगर बनाते हैं, बना करके वो आके मार्केट में बेचते हैं, गारंटीड उनको साल के आखिर में रिटर्न मिलता है। अच्छा, हमारे अमीरों का भी ना बड़ा ये शिशका है कि उनको गारंटी जब तक ना मिले ना वो कोई काम नहीं करते सही तरीके से। IPP के ऊपर भी हमें बेचा गया कि ये बाहर से सारा इन्वेस्टर आया, उसके बाद हमने सॉवरेन गारंटीज़ की और हम जो है ना वो बिज़नेस डील्स में उनके साथ हैं। पता ये लगा कि जी सारे के सारे आपके ये सैगल ग्रुप, तो यू नो मंचा ग्रुप, तो जरदारीज़ और दिस और दैट, ये लिटरली यही सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा डाल डूल के ये IPPs लगाए हुए हैं। और वो IPPs उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट से जा करके हैंडशेक करके उन्होंने कहा जी सॉवरेन गारंटी, जी आपकी गारंटी, आप 30 साल तक जो है ना हमें गारंटी पैसे देते रहेंगे। और जब आम आदमी जाके सोलर लगाता है तो उसके ऊपर टैक्स भी लग जाता है, उसके ऊपर जो है ना वो जो डील हुई हुई होती है वो डील भी चेंज हो जाती है कि जी देखें हालात ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स में यू नो फिगर आउट नहीं हो रही। लेकिन IPP के केस में गारंटी चाहिए आपको और आप जो है ना उसके ऊपर कोई डील को फिर से नहीं देख सकते। इसी तरीके से शुगर का भी ये सीन है कि जी आपने मार्केट को फुली रेगुलेट किया हुआ है, आपने कहा कि जी लाइसेंसेस मिलेंगे, वो जो पुराना कम्युनिज्म वाला टाइम है कि जी लाइसेंसेस मिलेंगे। क्यों लाइसेंसेस मिलेंगे? क्योंकि अगर तो ये ओपन मार्केट में चला गया कॉम्पिटिशन आ जाएगा, कॉम्पिटिशन आ जाएगा तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको अच्छी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, इनको जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन करनी पड़ेगी। ये जो आंखें बंद करके सुकून से पैसा कमाते हैं वो पैसा बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से शुगर माफिया जिसको IMF कह रहा है कि डीरेगुलेट करें, ओपन करें, टू द एक्सटेंट के आपके कमिश्नर्स होते हैं जो कि जा करके ना अगर किसी ने गन्ना उगाया हुआ ना किसी फार्मर ने, तो वो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जाएंगे और जाके कहेंगे ये सारा गन्ना जो है जी ये लेट्स से यू नो इत्तेफाक शुगर मिल की है या किसी भी शुगर मिल की है, और उस फार्मर को बाय लॉ अपना गन्ना उसी शुगर मिल को बेचना है, वो किसी और को नहीं बेच सकता। अब गन्ना जो है वो हर दिन अगर नहीं बिकता ना वो अपनी वैल्यू लूज़ करता है, तो जाहिर है फार्मर बेचारा एक्सटॉर्ट होता है। वो मिल वाला आता है, वो आके अपने मुंह मांगे जो है ना कीमत के ऊपर वो गन्ना खरीदता है, वो उसको प्रोसेस करके वो अपनी मर्जी से मार्केट में बेचता है। फिर आपको इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के स्कैंडल्स का ऑलरेडी पता है। अब अगर IMF के आप इतने मानने वाले हैं तो अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने जी पूरा शो डाल दिया, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, शुगर महंगी हो जाएगी, इतने मुश्किल हो जाएगी, गरीब आदमी का सोचें। अच्छा, ये सिंध वाले खासकर जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, कम्युनिस्ट टाइप, सोशलिस्ट टाइप, क्योंकि वो सोशलिज्म का सहारा लेते हैं। उनको पता है कि यार सोशलिज्म की लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत है, तो वो हमेशा गरीब आदमी का सहारा लेते हैं ताकि उसके सर के ऊपर जो है ना वो अपने पैसे बचा सकें, अपने आप को जो रेगुलेशन वो संभाल के रखते हैं ना, ये कह के देखो जी अगर हमने खोल दिया तो एकदम से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, गरीब आदमी जलील हो जाएगा। वो एक्चुअली सिर्फ अपने आप को बचा रहे होते हैं। उनका गरीब आदमी जो सिंध का है वो वैसे ही जलील हो गया है, उसका KP से भी बुरे हालात हैं, पंजाब से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप उनको। बट नॉनदलेस ये डिफरेंस है आपका जो इनएक्विटेबल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, या इनएक्विटेबल आपकी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है कि आपने बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनसे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके कोई बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगे, वो जाकर के अपने ऊपर डाका डालेंगे, वो नहीं डालेंगे, उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं है। आपको यू नो मैं कोई मॉरल स्टांस इसमें नहीं ले रहा कि ये लोग बड़े इमॉरल लोग हैं, करप्ट लोग हैं, आपको इंसेंटिव देखना होता है। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल IT या यू नो डिजिटल की लॉबी के लोग बिठाएंगे तो वो IT सेक्टर को उठाएगी। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाएंगे जिनका काम ही रियल एस्टेट का काम है या उनका काम है कि वो लाइसेंस के ऊपर जो है ना IPPs चलाते हैं या शुगर माफिया चलाते हैं, तो वो उससे आगे उनकी सोच ही नहीं जाती, वो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना है। हर इंसान उसको प्रोटेक्ट करता है जिस चीज़ से वो जुड़ा हुआ होता है। आप खुद जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, आपके लिए कहना बड़ी आसान होती है चीज़ें, लेकिन जिस दिन आपको अपनी नौकरी के ऊपर या अपने पेट के ऊपर डाका डाल करके कोई काम करना पड़े तो आपको मौत आ जाएगी, आप वो काम नहीं करेंगे, आप उसको ऐसे वैसे घुमाएंगे, आप उसको रैशनलाइज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको मोरालिटी के ज़ुमरे से 2 मिनट साइड पर रख के देखें तो ऑब्वियस ही बात है जो ऐसे लोग हैं जो पुराने पाकिस्तान में रहे हैं, पले बड़े हैं, जिन्होंने उस सिस्टम को समझा है, उस सिस्टम को चैम्पियन किया है, वो आके सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट देयर इन लाइज द प्रॉब्लम। और बजट में भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टैक्सेशन की कि यार ये जो टैक्सेशन है ये इनएक्विटेबल है, इसमें जाहिर है जो मुझे देखने वाला है ना वो कोई बिजनेस क्लास तो है कोई नहीं, हो सकता है कुछ स्पोरैडिकली आगे पीछे कोई बिजनेस वाला हो, लेकिन मेजॉरिटी बेचारे आम लोग हैं, वो कोई या तो यू नो जॉब्स कर रहे हैं या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या डॉलर में कमा रहे हैं रिमोट वर्क के थ्रू या कोई यू नो IT कंपनी के थ्रू। अब उस किस्म के लोग जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली मार खाने वाले हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो सिस्टम में आते हैं, वो बैंकिंग वाले होते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगना सबसे आसान होता है, उनको जलील करना सबसे आसान होता है। तो ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया सैलरीड क्लास को तो जितना निचोड़ सकती थी गवर्नमेंट निचोड़ चुकी है, उसके ऊपर एक्चुअली मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ ना तो मुझे लगता है कि जो ब्रैकेट्स हैं ना 6 लाख वाले और 12 लाख वाले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मुझे लगता है कि वो ब्रैकेट शायद थोड़े से वो अब बढ़ा दें और वो कोई ना कोई थोड़ा बहुत रिलीफ दे दें, कोई 5-7% का रिलीफ दे दें बॉटम ऑफ दैट पिरामिड, क्योंकि सैलरी क्लास टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल ही जलील हो गई है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पर आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन जहां पर वो आपको उस साइड पर रिलीफ देंगे वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको पूरा करना है। वो जाहिर है बिजली के बिलों को बढ़ाने की बात हो रही है, जो आपके यूनिट्स हैं 300 यूनिट वाली सब्सिडी खत्म होने की बात हो रही है, सोलर के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। अब ये भी मुझे समझ नहीं आता कि आप एज अ गवर्नमेंट, आपको कोई दिमाग होता है, आपका कोई सोच होती है, किसी विजन के साथ आप चला रहे होते हैं, आप कोई विजन दे देना। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे आज की तारीख में पूछें, मुझे पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से कोई मसला नहीं है, इनफैक्ट मैं सपोर्ट करता हूं इस डिसीजन को। वजह उसकी ये, बिफोर यू स्टार्ट अटैकिंग मी, वजह उसकी ये कि कॉम को डेफिनेटली मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन कॉम भी आपकी गुजारा तो कर रही है, उन्होंने तो अपने आप को एडजस्ट कर लिया, वरना वो उस वक्त सड़कों पर होते, वो शो डाल रहे होते। तो क्लियरली कॉम को कोई मसला नहीं है। अब हमेशा टैक्सेस और गवर्नमेंट की जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, ये इंसेंटिवाइजेशन और डिसइंसेंटिवाइजेशन के लिए होती है, इसका और कोई काम नहीं होता। जाहिर है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स कलेक्शन से वो डेवलपमेंट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन लार्जली उनकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो ओवरऑल आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करने के लिए होती है और होनी चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि यार मैं फ्यूल के ऊपर लेवी लगा के फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, मुझे ये इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि इससे आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं फ्यूल बेस्ड या पेट्रोल बेस्ड गाड़ियों को, पेट्रोल बेस्ड जो भी आपके काम शाम उसके अराउंड हो रहे हैं। अच्छा, आज से 10 साल पहले ये होता तो शायद मुझे कोफ्त होती, लेकिन आज की तारीख में जब अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और वो शायद थोड़े मार्जिनली एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन आपने यू नो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के आपने वो जो हमारी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अल्टरनेट और रिन्यूएबल और न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसकी तरफ आपने जो है ना एक इकोनॉमिक वायबिलिटी बना दी, जिसकी वजह से अब एक इंसेंटिव आ गया है लोगों को कि यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, चलो इलेक्ट्रिक की बाइक्स खरीद लेते हैं या इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, या हम इन्वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब हमें इससे बड़ा फायदा है एज अ नेशन, इंडिविजुअली भी हमें बड़ा फायदा है, लेकिन एज अ नेशन हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। ऑयल हमारा हर साल ठीक ठाक अमाउंट्स में इंपोर्ट होता है, हमारा डॉलर बचता है जब हम ऑयल की कंजम्पशन को कम करते हैं, साथ ही हमारी जो बिजली का ग्रिड है जिसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट पड़ती है क्योंकि हमारी कंजम्पशन बहुत कम है, तो अगर जब हम ऑयल को रिप्लेस करते हैं विद बिजली जो कि हम ग्रिड से खरीद रहे हैं जो कि महंगी बिजली है, उसके बावजूद पेट्रोल के महंगा होने की वजह से हमें बिजली का यूनिट सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादा कंजम्पशन आपकी ग्रिड पर जाएगी, ज़्यादा जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है वो इवेंचुअली कम होगी, वो डिवाइड होकर जाएगी क्योंकि हमारा इस वक्त डिमांड साइड का मसला है, तो वहाँ पे भी हमारे कंज्यूमर्स को फायदा है। फिर हमारे स्मॉग की वजह से पूरा पंजाब जो है वो तबाह हो जाता है टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर, और उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो उसका भी फायदा है। तो एक बड़ा क्लियर इंसेंटिव है, आपको नज़र आ रहा है कि यार एक पॉलिसी है जिसकी वजह से एक चीज़ डिसइंसेंटिवाइज हो रही है, जाहिर है उससे पेट्रोल पंपों को नुकसान हो रहा है क्योंकि डिमांड गिर रही है, लोगों को लगता है कि पेट्रोल पंप्स वाले पैसा बना रहे हैं, पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट बना रही है, उनका मार्जिन जो है वो 200 रुपए के पेट्रोल पे भी वही था, आज भी वही है, फर्क ये है कि डिमांड जो है वो अगर उस वक्त लेट से 100,000 गैलन बेचते थे, आज वो शायद 50,000 गैलन बेच रहे हैं क्योंकि लोगों की इस्तेमाल खत्म हो गई है, तो उनका एक्चुअली मार्जिन गिर रहा है, तो वो उनके लिए डिसइंसेंटिवाइजेशन है। जो लोग पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बेचते हैं, जो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलें बेचते हैं, उसके लिए डिसइंसेंटिवाइजेशन है, कंज्यूमर के लिए डिसइंसेंटिवाइजेशन है, लेकिन साथ ही इंसेंटिवाइजेशन है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। तो जहां पर एक इंडस्ट्री नीचे जा रही होती है वहां पर दूसरी इंडस्ट्री उठ रही होती है। हमने ये देखना होता है कि नेट के ऊपर हमारे मुल्क के लिए कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फायदेमंद है और कौन सी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में नुकसान दे रही है। अब अगर ये पॉलिसी आप अपना रहे हैं तो कोई मुझे समझाए, जो मुझे अभी तक सुनने में आ रहा है खबरों में, कि जी आप अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगाने लगें क्योंकि वो आपको शायद वो लॉबी ने आके बोला कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, हमारी तो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो आपने जो है ना, और वैसे भी आपको जाहिर है पैसे तो बनाने हैं, आपने कहीं ना कहीं से निचोड़ना है, तो आपने कहा कि यार ये इलेक्ट्रिक कार्स क्यों निकल रही, हालांकि आपको आपके मुल्क को फायदा है, आप IMF की 10 बातें कर लें, अगर IMF ने आपको बोला भी है ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगाओ, वो सिर्फ इस वजह से बोला है क्योंकि चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आ रहा है, अगर ये जर्मनी बेच रहा होता ना तो वो आपको क्लाइमेट चेंज बेच रहे होते आज बैठे हुए, लेकिन वही IMF जो कि शुगर माफिया के टाइम के ऊपर आपने कहा कि नहीं जी सर अभी नहीं हो सकता, 2-3 साल वेट करें, ये तो जो है ना हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, तो आप IMF से ये बात नहीं कर सकते कि यार हम कितनी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाते हैं उससे हम कितना कोई पैसा बना लेंगे, हमें आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज बिल्ड करने दें, हमारे क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है, हमारी स्मॉग के लिए ज़रूरी है, हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, उसकी इतनी इकोनॉमिक रीजनिंग है कि आप बड़े आराम से उनको कर सकते हैं। अच्छा, फिर सुनने में आ रहे हैं कि सोलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि वो जी जो आपका एनर्जी का सिस्टम है उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। अब लोगों ने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, नेट के ऊपर आपके मुल्क को फायदा है, जितनी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना आपको फायदा है। अब अगर अमीर आदमी उसे पैसा नहीं लगा रहा, उस पर कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है, आम आदमी डेमोक्रेटाइज पैसे से कर्जा लिए बगैर वो जाके सोलर लगा रहा है और पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगाने चले हैं। हालांकि नेपरा की भी पिछले दिनों रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बैठ के कोई लंबी लंबी तमीद बांधी कि जी हम कोई 18-20 हज़ार मेगावाट अब मजीद लगाएंगे अगले 10 साल, वो बंदा जाके दीवार पे सर मारे कि यार आपका जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो तो आप डिमांड में आपको मिल नहीं रही, उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट से आप जलील हो रहे हैं। जहां पर आप कह रहे हैं कि देखो जरा सोलर को आप जो है ना डिसइंसेंटिवाइज करो और उसकी वजह से ग्रिड सारा खराब हो रहा है, वहां पर आपने पता नहीं वो 500 मेगावाट का मैंने देखा कि कराची के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम दरिया के ऊपर जो है ना वो सोलर पैनल लगा देंगे और उसके लिए हम जो है जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे। भाई क्यों चाहिए इन्वेस्टर्स, सोलर पैनल ही लगा रहे ना, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं लगा रहे। तो फिर आप आम आदमी को लगाने दें जो कि आपसे ना कोई लोन ले रहा है ना कोई सॉवरेन गारंटी मांग रहा है, वो अपना काम कर रहा है सर नीचा रख के और अपनी एनर्जी खुद बना के खुद कंज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम जाके वो कल को बैटरियां लगा के मोहल्ले को बेच देगा, उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। तो अगेन द पॉलिसी इज़ वेरी रैंडम, लाइक किसी को कोई पता नहीं है कि वो चाहते क्या हैं, कोई कंट्री का कोई विजन दे दें, भाई आपने पेट्रोल के ऊपर इतना टैक्स लगाया है उस टैक्स को इस्तेमाल करें तुन दें, इलेक्ट्रिक बसें चला दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें, बोलें कौम को आए आके टीवी पे बैठे कहें यार मैं पेट्रोल की प्राइस कल से जो है ना 800 रुपये हो रही है, लेकिन अब सड़कों के ऊपर बसेस चला करेंगी। तो आपने अगर अपने दफ्तर पहुंचना है, आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, आपने इधर पहुंचना है उधर पहुंचना है, ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना हमारा काम है, अलबत्ता जो है ना आपकी गाड़ियों में आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कर लें ऐसा, आप अगर ये करेंगे कि यार ऑल्टरनेट का हमें नहीं पता, अब आप देखो मरो सड़ो जो करना है करो, पेट्रोल जो है वो महंगा ही चली जा रहा है, और जो ऑल्टरनेट है भी अगर मतलब आप तो कोई ऑल्टरनेट नहीं दे रहे, ऑल्टरनेट अगर कोई खुद से इकोनॉमिकली बन भी रहा है सोलर की मद में किसी और चीज़ की मद में, तो आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाने चले हो। तो यू नो वल्ला आलम, 10th को आएगा बजट, उसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली कि इंक्रीजिंगली ईयर ऑन ईयर ये जितना भी आपको घुमाते रहें, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए जितना भी आपको घुमाएंगे, आपकी टैक्स कलेक्शन ने बढ़ना है, विच मीन्स इसको समझिए कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आपकी कंजम्पशन की एबिलिटी उन्होंने कम करनी है। कंजम्पशन की एबिलिटी क्या किस तरीके से कम करनी है, आपकी बाइंग पावर कम करनी है। जब आपकी बाइंग पावर कम होगी तो आप कम कंज्यूम करेंगे, जब आप कम कंज्यूम करेंगे तो ये जो इनके सारे मसाइल हैं कि यार यू नो करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा वो उसको दूसरे तरीके भी हैं कंट्रोल करने के, वो जाएं और जाके डॉलर को थोड़ा सा फ्री फ्लोट कर दें, वो 280 रुपए के बजाय 300-320 पे हो जाएगा, उससे आपके एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज होगी। लेकिन एक्सपोर्ट को किसने इंसेंटिवाइज करना है, एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज कर दिया तो ये जो रेंट सीकर्स हैं जिनको कोई काम धंधा सही तरीके से आता नहीं है उनकी तो सारी पावर लूज हो जाएगी, बड़े बड़े अमीर नए लोग इमर्ज कर जाएंगे, ये जो आपकी मिडिल क्लास है ये अपर मिडिल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, अपर मिडिल वाले जो पढ़े लिखे स्मार्ट लोग हैं वो प्रोडक्टिविटी करके शायद बिलियनर्स बन जाएं, फिर इनकी क्या पावर रह जाएगी। तो कहीं ना इनका ही मतलब अगेन इलॉजिकल दिमाग है, एक्सपोर्ट लेड कंट्री बनाना है लेकिन 280 रुपए के ऊपर 105 रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के अंदर। उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में बोला है आपका रुपया है इस वक्त ओवर वैल्यू हुआ है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल दिल से लगा के रखा हुआ है उस रुपए को, वल्ला आलम वाए। तो लॉजिक वॉजिक कोई भी नहीं है, बस उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है। अब वो जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें आपकी बाइंग पावर ने वन वे और द अदर कम होना ही होना है, और चूंकि अगर आप बेचारे शरीफ आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप पे डबल आप जलालत है, क्योंकि आप जो है ना वो आपके ऊपर ही सारी हैमर गिरेगी। रिटेलर्स का भी सुनने में आ रहा है कि जी 20 करोड़ तक जो रिटेलर है जो कि मतलब 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है उसको 1% टैक्स देना होगा या 25,000 रुपये टैक्स देना होगा, विच एवर इज़ हायर आई बिलीव। तो अगर आप लेट से 20 करोड़ आपके टोटल टर्नओवर है तो उसके ऊपर आप 1% देंगे जो कि गालिबन आपका बनेगा 20 का 2 करोड़ 2 करोड़ का 20 लाख रुपया बनेगा, अगर तो हम उनके नंबर्स के ऊपर जाएं। प्रॉब्लम ये है जो जनरली आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, आप ज़रा कराची लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी जाएं, आप बड़ी मार्केट्स के अंदर जाएं जो यू नो छोटी दुकानों में बैठे होते हैं बल्क का काम कर रहे होते हैं, वो सारा पर्चियों पे काम चल रहा होता है। अच्छा वो पाकिस्तान में भी ना हमें लगता है हमारा अमीर आदमी जो है वो जो सूट पहनने वाला और अंग्रेज़ी बोलने वाला है ना वो अमीर आदमी है, वो ऐसा वैसा मुल्क को खा गया। मुल्क को जो सही बैठ के लूट रहे हैं ना वो आपके दरमियान वाले सारे रिटेलर्स हैं जो कि वैसे शलवार कमीज़ में बैठे होते हैं, एक उन्होंने यहाँ पे रुमाल रखा हुआ होता है। मैं खुद मुझे याद है मैं कराची में गया था, कौन सी वो कॉलोनी थी पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरा एक दोस्त वहाँ पर होता है, वो भी बड़ा यू नो उसका एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म का काम है, मैं इधर बोलूंगा नहीं, बट उसने मुझे सारा एक्सपोज कराया इस पूरी इंडस्ट्री से कि वहाँ पर लोग लिटरली बैठे होते हैं, आप उनको देखेंगे ना कहेंगे बेचारा यार बेचारा मिडिल क्लास आदमी है, उसकी गरीब सी दुकान है छोटी सी दुकान है उस पर वो फर्श पे बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है, पर्चियाँ घुमा घुमो के शाम को आप उन्हीं के लोगों के घर जाते हैं, वो जी 25 करोड़ का घर होता है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं और सारा का सारा काम धंधा चल रहा होता है और सारा का सारा आउट ऑफ टैक्स चल रहा होता है। तो रिटेलर्स जो है ना जो कि अगेन कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, इधर से माल पकड़ा उधर से बेचा, ज़्यादातर बाहर का माल आके पूरे मुल्क को बेच दिया, उनकी बड़ी लॉबी है, उनको आप पकड़ना ना चाहते हैं ना आपके अंदर इतना दम है कि आप उनको पकड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर आप इसी किस्म का स्टूपिड किस्म का आके 1% वाला रूल अप्लाई करते हैं। उस पर भी आपको किसी ने 1% बाय द वे देना है कोई नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा ऑफ द बुक्स काम हो रहा है, कैश के ऊपर काम हो रहा है, तो आप डंडे के जोर पे आएं जाके कैश खत्म करें इस मुल्क के अंदर, और आप जिस तरह इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन की थी फिर आप सबको बैंकों में मूव करें, फिर जब बैंकों में मूव होगा तो आपको नेट के ऊपर अमाउंट आ रही होगी ना, फिर आप उसके ऊपर 1% चार्ज करें, 100 बिस्मिल्ला। लेकिन आज आपको पता है 20 करोड़ रुपए वाला किस बंदे ने जाके दिखाना है कि जी 20 करोड़ का काम हो रहा है। उन्होंने 50 अकाउंट्स रखे हुए होते हैं, वैसे तो पहली फुर्सत में वो सारा काम कैश के ऊपर करते हैं, फिर जहाँ पे नहीं भी करना होता वो 50 अकाउंट्स में ऐसे घुमा घुमू के वो लेकर आते हैं कि वो पैसा कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो एनीवेज मेरी जो दिल की बढ़ास है और जो रेंट है वो काफ़ी लेफ्ट राइट टेंजेंट्स पे जा रही है। अब ऑलरेडी रिटेलर्स की बात हो गई कि जी उसके ऊपर वो 1% वाली बात आ रही है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्स जिसने देना है वो तो दे नहीं रहा। जो आपके छोटे शहरों में सारे लोग हैं, जो SME सारा सेक्टर है, वो सारा का सारा ग्रे इकोनॉमी में काम कर रहा है, डॉक्टर्स लॉयर्स छोटी छोटी क्लिनिकें खोल के बैठे हुए हैं, वो कोई आपको टैक्स थ्रूस नहीं दे रहे जिस तरीके से सैलरी क्लास दे रही है या जिस तरीके से सिस्टम वाले लोग दे रहे हैं, जो कि यू नो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्टर करके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, उनको तो जाहिर है प्रॉपर लायबिलिटी आती है, FBR को उनके लिए पकड़ना भी आसान है। एक्सपोर्ट के जितने लोग हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट सारा का सारा जो है वो पेपर के ऊपर होता है, तो उनको पूरा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्मगलिंग करते हैं, घुमा घुमू के लेकर आते हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी तरीके से जो छोटे SME सेक्टर पूरा बैठा हुआ है वो कोई टैक्स नहीं देता। अब इस बात को आपने दिमाग में रखना है, इस बात को आपने समझना है। अब हम थोड़ा सा आते हैं, ये जो पाशा वाली हरकत हुई, पाशा ने कहा कि जी हमसे आप कोई टैक्स ना लें, 0.25% टैक्स लें, और आप जो है ना ये जो रिमोट वर्कर हैं खासकर इनसे आप टैक्स ले लें। और पाशा ने खुद अपनी जो जाहिर लोगों ने बड़ा शो डाला, तो खासकर जो फ्रीलांसर्स ने शो डाला, तो उसके ऊपर पाशा ने एक्सप्लेनेशन ये दी कि जी हम फ्रीलांसर्स के खिलाफ नहीं है, हमें रिमोट वर्कर से मसला है, तो फ्रीलांसर्स को हम टैक्स करने की बात नहीं कर रहे। हालांकि मिनिस्टर ऑफ IT जो शजा ख्वाजा साहिबा हैं, उनकी कल या परसों एक फ्रीलांसर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसका जो हाल है उस मीटिंग का वो जाहिर है कि लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी लोगों ने शेयर किया, उसमें एक्सप्लिसिटली मल्टीपल लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि शजा ख्वाजा साहिबा ने ये बात बोली है कि जी टैक्स के ऊपर हम कॉमेंट नहीं कर सकते, ये IMF का मामला है, हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर किसी को ये बात समझ आ जाती है तो यही समझ आती है कि जी बजट के ऊपर फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगने वाला है, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। पहला तो ये जो इमरजेंसी के ऊपर शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो हैं वो आकर के फ्रीलांसर से मिल रही हैं, एंगेज कर रही हैं, तो उनको पता है कि अगले 2-1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा खप आने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई टैक्स अनाउंस होगा, तो उससे पहले जाके वो एक थोड़ी सी गुडविल बनाना चाह रही हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर कोई कनेक्शन बनाना चाह रही हैं, ताकि लोग एक्चुअली आ सकें और वो आके बता सकें वो अपनी यू नो इस टैक्स की रूहानी अजमतें जो है ना वो आम आदमी तक पहुँचा सकें। एक तो मुझे ये नज़र आता है, अगेन वी डोंट नो एनीथिंग फॉर श्योर, वी विल नो ऑन द 10th of February, बट अगर हम पाशा की भी बात करते हैं जिन्होंने ये बोला कि जी फ्रीलांसर्स पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ रिमोट वर्कर्स पे लगना चाहिए, तो अब आपको ना यहाँ पर रेंट सीकिंग की आला मिसाल नज़र आती है, क्योंकि हो ये रहा है। अच्छा, पाशा की जो अपनी एक्सप्लेनेशन है ना वो ऑन फेस वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास एक एम्प्लॉई होता है, हम उसको 3 लाख रुपये तनख्वाह देते हैं, चूँकि सिस्टम में तनख्वाहदार जो तबका है उसको आपको टैक्स देना, उसका काटना पड़ता है कंपनी को, तो हम उसके ऊपर लेट से 10% 15% जो भी उसके ब्रैकेट पे पड़ता है हम उसको काट लेते हैं। वो 3 लाख वाला एम्प्लॉई जो है वो 30,000 रुपया टैक्स देना शुरू कर देता है। अच्छा, वही 3 लाख वाला जो एम्प्लॉई है जो कि अब 2,70,000 रुपया कमा रहा है इनकी कंपनी में, वो जाते हैं और वो जाके बाहर एक नौकरी ढूंढता है, उसके ऊपर लेट से उसको $1,100 की नौकरी मिलती है, उसके ऊपर 3 लाख रुपया वो अब कमाना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि वो बाहर से पैसा कमा रहा है डायरेक्ट डॉलर्स के अंदर, तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं लगता, और इस वजह से इन लोगों के लिए बाहर के लोगों से कम्पीट करना मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से आप बराह करम इसको आके नॉर्मलाइज करें। अच्छा, इस पाशा ये भी बोल सकता था कि जी देखें ज़रा ये जो फ्रीलांसर है या ये जो रिमोट वर्कर है इसमें कितना इजाफा हुआ है, कितना ज़्यादा ये लोग पैसा लेकर आए हैं, जिस तरह से ये लोग रिमोट वर्कर्स हैं उसी तरह हमारे भी जो वर्कर्स हैं वो सारे एक्सपोर्ट के वर्कर्स हैं, आप बराह करम इंडस्ट्री वाइड हमें जो है ना सैलरी के ऊपर कोई ना कोई छूट दें। लेकिन अगेन आप वो उनके अंदर वो तो है कोई नहीं, तप्पड़ तो है कोई नहीं जिस तरीके से ट्रेड या रिटेलर्स के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि जी अपने ऊपर से हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी और को अंडर द बस थ्रो कर दो, और उन्होंने जाके जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको अंडर द बस थ्रो कर दिया। ये जो रैशनैलिटी है ना, चले उसको मैं ऑन सम लेवल मान भी लूँ, बट आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और ओवरऑल मैक्रो पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है सर कि AI के आने की वजह से जो इंटायर बिजनेस मॉडल है ना ऑफ लो वैल्यू आर्बिट्राज, ये जो ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंटेशन का बिजनेस है जो कि आप बेसिकली हेड्स बेचते हो जाके गोरे को, वो वाला बिजनेस ये 90s में चलना शुरू हुआ था, उसके बाद ये बढ़ते 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 इस टाइम के ऊपर पीक कर चुका है। इंडिया के अंदर जाहिर है कि एक बिजनेस बहुत बड़ा है, 100-150-200 अरब डॉलर सिर्फ स्टाफ ऑगमेंटेशन का वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले एक साल से जब से AI बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम होना शुरू हुई है, तो इंडिया में भी हमने ये सुना उनके रेवेन्यूज ड्रॉप ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन उनका हेडकाउंट ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो आपके लोएस्ट वैल्यू वर्कर्स थे वो सारे के सारे रिडंडेंट होना शुरू हो गए। क्योंकि AI आज लोग कहते हैं कि बहुत कोई ज़बरदस्त नहीं है, भाई मैं मान लेता हूँ बहुत ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन आप अपने बॉटम 30% एम्प्लॉयज़ को उठाएं और मुझे बताएं कि क्या उससे AI बेहतर है। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ कि उससे AI बहुत बेहतर है। तो होता आखिर में यही है कि जो बिल्कुल लो वैल्यू काम होता है ना उसको AI चुटकी बजा करके बेहतर कर लेती है उसके ऊपर। हाँ, हाई वैल्यू जो वर्कर है वो जो पहले उसके लिए नीचे लो वैल्यू का 5 वर्कर था जो कि उसको इनपुट दे रहा था वो अभी AI दे देती है, तो इस वजह से इन लोगों को ऑलरेडी जो है ना बड़ी मार पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जो स्टाफ ऑगमेंटेशन है जो बिल्कुल रिडंडेंट काम है जिसमें कोई रिसोर्स की ग्रोथ नहीं है, कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं है, वो हो नहीं रहा, इनको अपनी ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इनको अब ये है कि यार किस तरीके से, जैसा कि हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान में होता है कि जब आप कंपीट नहीं कर सकते तो आप किसी तरीके से रेगुलेट करके उनको जो ना इकोनॉमिकली उनको मार दो, और जो आपकी थोड़ी बहुत ही डेढ़ यूनिट की मस्जिद है आप उसको बचाने की कोशिश करते हो। सर पाशा के वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड जो लोग हैं, जो बोर्ड के लोग हैं जिन्होंने बैठ के ये रिकमेंडेशन लिखी, एक तो पहली बात है शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के बजाय आप इंडस्ट्री के ही कंपोनेंट्स को अंडर द बस थ्रो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है ना तो आपको अडैप्ट करना चाहिए, आपको इवॉल्व करना चाहिए। अगर आपका रिसोर्स छोड़ के जा रहा है और जाकर के रिमोट वर्क ले रहा है और उसको उसके ऊपर इंसेंटिव भी मिल रहा है, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए और आपको खुश होना चाहिए कि वो बंदा पाकिस्तान में बैठ के डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ रहा है। और साथ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि पिछले 20 साल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि आप जाए जाके जब आपने उस बच्चे को रखा हुआ है ना तो आप 10 और उस तरह के बच्चे हायर करें ताकि जैसे ही वो आपको छोड़ के जाए तो आप उसके किसी और बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि वो बैठ के वहां पे काम कर ले, और इवेंचुअली जब वो स्किल हो जाएगी और वो भी अगर बाहर डॉलर में काम कर सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, इससे इंडस्ट्री ग्रो होती है। अब अगर आप टैक्स की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग आके ये बात बोलते हैं कि यार ये जो डॉलर पाकिस्तान में लेकर आते हैं ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। सर पहली बात तो ये है कि पूरा मुल्क जो आपका चल रहा है ना वो दो चीज़ों पे चल रहा है, वो आपका रेमिटेंस के ऊपर चल रहा है, जो 40-45 अरब डॉलर आपका रेमिटेंस की मद में आते हैं, मजदूर जो है ना अपना पेट काटता है मिडल ईस्ट का 3-3 हज़ार दिरहम के ऊपर बैठ के 18-18 घंटे नौकरियां करता है और एक एक कमरे में 40-40 बंदा सोता है और 50 डिग्री की हीट के अंदर जो है ना वो बैठ के डिलीवरियां करता है ताकि उसके घर वाले पाकिस्तान में खाना खा सकें, और जो घर वाले हैं वो उनको रुपया मिलता है, जो डॉलर है या जो दरहम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में जाता है, उस डॉलर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाके तेल खरीदती है, उस डॉलर से आपका कुकिंग ऑयल आता है जो कि सारे के सारे पाकिस्तानी याशी में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉलर को एक सब्सिडाइज करके बैठी हुई, विच मींस के जो रेमिटेंस का पैसा है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है ना जब वो पाकिस्तान में अपने घर वालों को भेजता है उसको वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती, वो वैल्यू उसके घर वालों से ट्रांसफर होती है उस इंपोर्टर को जो कि सस्ता माल मंगवा करके पाकिस्तान में बेचता है, जो इंपोर्टर है जो रिटेलर है। तो आप इस तरह से इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का देखें कि आप किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो गरीब वर्कर है, सबसे ज्यादा पैसा वो गरीब वर्कर भेजता है, बाय द वे व्हाइट कॉलर वाला इतना नहीं भेजता, व्हाइट कॉलर वाला जाता है जाके मॉर्गेज पे घर ले लेता है, वो वेस्ट निकल जाता है, वो पासपोर्ट ले लेता है, उसका पासपोर्ट आ जाता है, वो कहता है यार ठीक है मैं इधर इन्वेस्ट करूं, मैंने पाकिस्तान में किसको भेजना है। जो गरीब आदमी है ना जिसको पता है कि यार मेरे पास पासपोर्ट नहीं आएगा इधर मिडल ईस्ट के अंदर और मेरे घर वाले भूखे हैं, वो अपनी 50-70% सैलरी पाकिस्तान भेज रहा होता है, उसके डॉलर को आप सब्सिडाइज करते हैं ताकि जो है ना इंपोर्टर की याशी चले। दूसरे नंबर के ऊपर आपके एक्सपोर्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स भी डेफिनेटली हैं, 30-35 अरब डॉलर की आपकी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है, उसके अंदर आपका स्पोर्ट्स का है, अभी फीफा होने वाला है उसमें फुटबॉलें जा रही हैं, मोजे दुनिया के सारे जो है जो इंटरलूप बनाता है, यूटोपिया डील्स जो है वो दुनिया की आई थिंक 3rd या 2nd largest Amazon स्टोर है, close to $1 billion की वो सेल करने लगे हैं और वो ऑलमोस्ट जो है ना मेरा ख्याल है $700 million का सिर्फ वो पाकिस्तान में माल खरीद के बाहर भेजते हैं, और कुछ 250 एकड़ का वो एक प्लांट लगा रहे हैं कराची के अंदर जहां पर वो बहुत सारी और चीज़ें बनाने लगे हैं, पहले तो बेडशीटों में और इन सारी चीज़ों में थे। लेकिन जो ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है इसके अंदर स्टिल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का कंपोनेंट होता है, जो आपका ये जो सर्विसेज वाला एक्सपोर्ट है ना ये तो लिटरली आपके मुल्क में कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएट कर रहा है मुल्क के लिए, वो और कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो मुल्क के रिसोर्सेज हैं जिनको वो बाहर जाके किसी और को बेच रहा है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आप मुल्क का पानी यूज करते हैं, उससे आप अनाज उगाते हैं और उस अनाज को आप जाकर किसी और को बेचते हैं, तो वो मुल्क की चीज बेचकर आप उससे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है आप इस तरह से भी उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। जो सर्विसेज का वर्कर है ना वो आपके ऊपर वाकई एहसान कर रहा है अगर वो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा रहा है, और स्पेशली पिछले 2-1 सालों के अंदर 10 मेरे पास मेंटरशिप कॉल्स बुक हो चुके हैं जिसमें लोग आके मुझे जो है ना ये कहते हैं कि मुजम्मिल भाई हम बड़े कन्फ्लिक्टेड हैं बाहर जाएं या पाकिस्तान में रहें, देखें पाकिस्तान में हमें इतनी अयाशी चल रही है, $10,000 हम अगर कमा रहे हैं तो हमें 27-28 लाख रुपया मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है नहीं, हम यहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस लोकल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती लेकिन दिल कहता है कि बाहर चले जाएं। अब वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं $10,000-15,000 पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और ये रैपिडली इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम बाय द वे, उन लोगों को अब आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि यार तू पागल है कि तू पाकिस्तान में बैठा हुआ था, तू चुप करके उठ, और जो डिजिटल नोमैड की पूरी दुनिया में भगदड़ मची हुई है ना मलेशिया के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, थाईलैंड के अंदर, तू वहाँ जा भाई, वहाँ पे तुझे टैक्स फ्री आराम से सुकून में रहने की ज़िंदगी मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, खासकर अगर आप मलेशिया में जाएँ तो एक्सट्रीमली चीप कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बेहतरीन मुआशरा है, सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, मुसलमान मुल्क है, उधर जाओ, तुम पागल हो, तुम पाकिस्तान में बैठे हुए हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो तुम्हें निचोड़ेंगे ये सारे के सारे आकर के, क्योंकि उनको हो गया कि यार कि क्यों बेवकूफ़ आदमी बैठा यहाँ पे डॉलर कमा रहा है और मुल्क के लिए डॉलर लेकर आ रहा है। और अगर डॉलर लाना कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है ना, तो ये जो बड़े बाबूज हैं पाशा वाले, इन्होंने जो अपने पर्सनल शशकों के लिए 0.25% वाली जो टैक्स ब्रेक ली हुई है, तो सर उसको भी छोड़ देना। फिर आप एक काम करें कि आप फिर फ्लैट रखें कि जिस तरीके से बाकी सारे पाकिस्तान में इदारे हैं ना, वो कॉर्पोरेट टैक्स भी देते हैं, वो इनकम जो कॉर्पोरेट की इनकम टैक्स है, जो सुपर टैक्सेस भी उसके ऊपर है, वो सारे के सारे देते हैं, तो आप भी वो दे दें, फिर आप भी फ्लैट नॉर्मल इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएं। क्योंकि जब आप ये टैक्स की छूट लेते हैं तो आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं बाकी पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि जी वो बंदा जो है वो वहाँ नहीं जाता, वो आपके पास आके काम करना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो आपकी लॉजिक आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, कोई खुदा का खौफ करें, लोगों को डिसइंसेंटिवाइज ना करें। अगर फाइनली डॉलर आ रहे हैं मुल्क के अंदर, तो अगेन जो मैं आपको स्टार्ट में बात कर रहा था ना कि कोई डायरेक्शन दिमाग में रखें सर, कि अगर मुल्क को डॉलर चाहिए है तो उस डॉलर के अराउंड हमें सर्टन लोगों को, सर्टन चीज़ों को, सर्टन इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करना होगा, और रेंट सीकर्स को नहीं इंसेंटिवाइज करना होगा। क्योंकि जो बाबू है ना आपके बड़े बड़े, जो ये पाशा वाले हैं, इन्होंने तो सबने अपनी होल्ड कोस्ट बनाई हुई है बाहर, इनका तो पैसा वैसे ही सारा पार्क होता है, इनका तो सिर्फ कॉस्ट आती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इनको खलती है कि यार ये यू नो टैक्स देना पड़ रहा है हमें तनख्वाहों की मद में, उसका भी वर्क अराउंड था लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया, अब वो इसके टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एनीवेज वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है, तो टैक्स के ऊपर मैंने एक्चुअली पूरी ना एक करना था, सोच रहा हूँ कल कर लूँ, आज रेंट ज़्यादा हो गई है, कल कर लेता हूँ। जिसमें मैं चाहिए रहा था कि आप लोगों को ना डिटेल में बताऊं कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी, जो अमीर लोग हैं ना, हाउ द रिच पे देयर टैक्सेस एंड हाउ द रिच वर्क अराउंड सिस्टम्स के, जिसके अंदर जो है ना उनको FBI भी आके नहीं पकड़ सकती, लेकिन उनके पास यू नो नौकर चाकर भी होते हैं, याशी भी चल रही होती है। आप सोचते हैं यार इनकी कैसे इतनी याशी चल रही है, मैं तो जलील हो गया हूँ, मैं तो 10-12-15 लाख रुपया भी कमा रहा हूँ अगर सैलरीड, तो मैं उसके ऊपर 30-35 यू नो परसेंट टैक्स देने के बाद तो मेरे पास बचता कुछ नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकता अगर मेरे पास इतना पैसे भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सारा ले जा रही है। तो ये बाकी लोग किस तरह याशी कर रहे हैं, उसमें टैक्स ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज मैं एक छोटा सा चुटखला, क्योंकि मैं टैक्स वाली वीडियो में चुटखला छोड़ना नहीं चाहता, एक छोटा सा चुटखला छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रैंट किस्म की बात हो रही है इसके ऊपर ना काफ़ी। जब टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है ना, खासकर कल जब हम वीडियो करेंगे इसके ऊपर, तो आप लोग आके शायद बोलें, लोग कहेंगे यार मुजम्मिल भाई आप ये जो है ना आके कौम को टैक्स अवॉइडेंस क्यों करवा रहे हैं, या जो टैक्स वो दे सकते हैं उसको आप क्यों कह रहे हैं कि वो ना दें। तो सर ये चीज़ याद रखिए, मैं टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिस्टम या निज़ाम बनाने वाला मैं नहीं हूँ, निज़ाम जो है वो कोई और बनाता है, उस निज़ाम के अंदर ना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट निज़ाम फिर हर किसी ने एडजस्ट करना होता है। अमीर आदमी एडजस्ट करता है और अमीर आदमी निज़ाम अपने लिए बनाता है। अच्छा, निज़ाम को ठीक करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप जाएं और जाके कोई तहरीक चलाएं, आवाज़ उठाएं, अगर आपके पास आवाज़ उठाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, तहरीक चलाने की भी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, अगर डंडे के जोर के ऊपर उन्होंने आपसे कह ही दिया है कि भाई तू चुप करके हमारी बात सुन और ज़्यादा शोर ना डाल, तो दूसरा तरीका फिर बड़ा एप्लीकेबल होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अमीर आदमी के सिस्टम को नोटिस करते हैं, और जो सिस्टम उसने बनाया है ना आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नफ़रत है ना अमीर आदमी को, वो नफ़रत ये है कि जब न्यूली रिच एजुकेटेड क्लास जो है ना वो उनके वाले शशकों में आ जाती है ना, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक तो ये कि उनके जो वे आउट्स थे वो फिर सस्टेनेबल नहीं रहते, क्योंकि वो 4-6-8 लोगों के लिए तो डेफिनेटली ठीक हैं, लेकिन जब उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर उनको एक्चुअल में वो रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं जो कि ओवरऑल मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। एक तो ये आपने दिमाग में रखनी है बात कि जी हम सिस्टम, अगर हम सिस्टम के अंदर रहते हुए ही उसके लूप होल्स को यूटिलाइज़ करके ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो हम कोई इमोरल चीज़ नहीं कर रहे। दूसरा यह कि मोरालिटी और इमोरालिटी भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अब पिछले दिनों ना मैं, आज डिबेट चल रही थी एक CEOs की तनख्वाहों के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर गूगल करना शुरू किया, मैंने कहा जी पाकिस्तान में टॉप पेड CEOs कौन है, पता ये लगा कि जी मीज़ान बैंक, जिसके ऊपर आपके जो ये स्टॉक मार्केट वाले सारे ब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, वो कहते हैं जी बैंक के स्टॉक्स बड़े ज़बरदस्त हैं, उसने हमें बड़ा पैसा बना के दिया। वो जाहिर है बैंक के अल्टीमेट रेंट सीकिंग का तरीका है पाकिस्तान के अंदर, वैल्यू जनरेशन 1.5 रुपए की कोई नहीं है, बस वो गवर्नमेंट को कर्जा दिए जाओ और उसके ऊपर पैसा कमाई जाओ। तो मीज़ान बैंक जो कि यू नो तकी उस्मानी साहब ने बड़े फतवे दे के, उनके बोर्ड में बैठते हैं, मीज़ान बैंक अपने आप कहते हैं जी हम बड़ा शरिया कंप्लायंट बैंक है, मीज़ान बैंक ऑनलाइन बैंकिंग अलाउ नहीं करता, मीज़ान बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता, मीज़ान बैंक इस्लामिक बैंक, बेहतरीन बैंक पाकिस्तान का जाना माना, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न हैं वो भी उसने दिए पिछले 15-20 सालों के अंदर। तो मीज़ान बैंक के जो CEO साहब हैं ना वो सबसे ज़्यादा पेड मुझे पता लगा कि जी वो हैं। अच्छा, उसके ऊपर ऑनलाइन मुझे कोई डेटा मिल नहीं रहा था, तो मैं उनकी वेबसाइट भी चला गया, मैंने देखा जी वहाँ पे मीज़ान GPT के नाम से उनका एक चैट बॉट है। आप भी जाके कोशिश करिएगा, अगर उन्होंने मेरी वीडियो के बाद उतार ना दिया हो तो वो चीज GPT आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बड़ा अच्छा है, मैं सराहूंगा उनकी इस एफर्ट को। अच्छा, उससे मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जी आप जरा पिछले साल की अपनी एनुअल रिपोर्ट जो कि आपकी वेबसाइट में पड़ी हुई है उसको जरा खोलें और मुझे बताएं कि आपकी CEO की तनख्वाह टोटल पिछले साल कितनी थी। उसने कहा जी बोनस शोनस सब मिला मिलू के 55 करोड़ रुपया उन्होंने सालाना कमाया। मैं कह ज़बरदस्त, आपने उन्होंने 5 करोड़ रुपया महीने का कमाया जो कि तकरीबन बनता है कोई दो गालिबन कितना बनता है $200,000 बनता है, हाँ इसी तरह बनता है $2 million उनका $2 million बनता है सालाना, तो आप समझ लें कि $200,000 महाना। मैं कहा जी ज़बरदस्त काम है जी, इतना बड़ा बैंक चला आ रहे हैं और माशाल्लाह है भी इस्लामिक बैंक और इस्लाम के और शरिया कंप्लायंट बैंक है, तो अच्छी बात है वेल्थ क्रिएट करें। मैं कहा जी आप ना मुझे ज़रा ये बताइएगा पैसे ये कमाई कैसे हैं, मतलब है आपने ज़ाहिर है कोई इतना इस्लामिक फाइनेंस को अगर आप रखते हैं अपने दिल की दिलो जान के अंदर तो आपने कहीं जाके बिजनेस ढूंढने होंगे, उसमें इन्वेस्ट किया होगा। इस्लामिक फाइनेंस के अगर फंडामेंटल्स को आप पढ़ें तो उसमें तो यही है ना, उसमें तो ये है कि यार प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना है, हमने पैसे कमाने हैं, मुआशरे में ट्रस्ट लेकर आना है और हमने ढूंढ ढांड के हमने लोगों को पैसा देना है जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और उससे ओवरऑल मुआशरे की वैल्यू बढ़ेगी और बैंक भी अगर इस्लामिक बैंक है तो वो वैल्यू बढ़ाएगा। तो मैंने से पूछा, मैंने कहा जी पैसा प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सीन है? कहा जी रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है सर, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी सोच है। मैं कहा वाह जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, तो मुझे ज़रा थोड़ा बताएं कि प्रॉफिटेबिलिटी आई कहाँ से, इतना पैसा बना कहाँ से? बड़े प्राउडली ना उस मुझे बॉट ने बोला, उसने कहा जी हमारा 80% जो पैसा बना है ना वो हमारा स्प्रेड पे बना है, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो कर्जा दिया हुआ था ना उसके ऊपर हमने बनाया। मैं कहा जी हैं क्या मतलब? अच्छा स्प्रेड को जब आप अगर समझते हैं तो स्प्रेड क्या होता है कि बेसिकली जो आपने कर्जा बैंक का काम बेसिकली क्या है, उसने किसी का पैसा उठाना है और किसी को देना है, ठीक है। अब होता नॉर्मली ये है कि जब आप किसी से पैसा उठा रहे होते हैं तो आप उसको कोई पैसे देते हैं, आप कहते हैं कि यार सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख दो, एक साल के लिए ब्लॉक कर दो तो मैं 12% दे दूंगा। वहां से आप उस पैसे को उठाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आती है कहती है यार 13% का बॉन्ड है ये मेरे से ले लो, आप जो है ना वो 13% के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो पैसा दे देते हैं, 1% आपका स्प्रेड है और 12% आपने वापस उस बंदे को दे दिया जिसका वो पैसा आपने उठाया था। अब मिज़ान बैंक इतना प्रॉफिटेबल क्यों हो गया? क्योंकि जी वो शरिया कंप्लायंस की वजह से ना उसने आम आदमी को तो बोला कि यार ये सेविंग शेविंग तो कोई सारा सूद है, वो तो सूद की मद में आता है, तो तू अपना पैसा सारा का सारा रख करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और उधर से उन्होंने वाह जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेट दिया, उसको सुकूक बॉन्ड कह दें आप, कान को इधर से पकड़ लें कान को उधर से पकड़ लें, लेकिन आखिर में आप डेट दे रहे हैं और जो कन्वेंशनल बैंक है वो तो कम अज़ कम फिर वो पैसा पास ऑन कर रहा है आम आदमी को, क्योंकि आप ये याद रखिएगा रुपया फियट है तो रुपये की अपनी वैल्यू लूज़ करता है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट का पॉलिसी रेट जो है ना वो उसी के लगभग होता है। अगर फॉर एग्जांपल 12% इन्फ्लेशन है और 12% या 11% या 10% गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट रखा हुआ है, जो कि नॉर्मली इज़ व्हाट द पर्सन जिसको जिसका सेविंग्स अकाउंट में पैसा है वो उसको वही अमाउंट मिल रही होती है, उसे मार्जिनली थोड़ी कम मिल रही होती है, तो एक्चुअल में वो कोई पैसे कमा नहीं रहा होता है, एक्चुअल में वो अपनी इन्फ्लेशन से हेज करके बैठा हुआ होता है, वो अपनी वैल्यू को मेंटेन कर रहा होता है। इन्होंने शरिया इस्तेमाल करके उन्होंने आम आदमी को बोला कि भाई तू अपना पैसा करंट अकाउंट में रख, 15% इन्फ्लेशन के ऊपर तू अपना पैसा लूज़ करेगा, और वो पैसा वावा उठा के उन्होंने गवर्नमेंट को दिया और उसके ऊपर तो उनके पैसा बनाया, उस पर CEO साहब ने 55 करोड़ रुपया महाना सालाना भी कमाया। अब मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल कतन इससे मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इससे शायद इसकी ब्रांडिंग के ऊपर मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, फिलोसॉफिकली मैं ये बात कर सकता हूँ, फिएट मनी आई थिंक कैश इज ट्रैश और ये फिएट वाला जो चूना है वो बिल्कुल चूना है और वो जो है ना सबसे इनहेरेंटली अन इस्लामिक है। आपको डेट को जो है ना वो इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जो आपका रिबा है जो आपका सूद है वो तो शुरू हो जाता है जब आप मनी प्रिंटिंग शुरू करते हैं और वो उसके ऊपर पूरा एक फलसफा है और हम मल्टीपल टाइम्स एपिसोड कर चुके हैं, उसको आप दो मिनट साइड पे रखें। तो निज़ाम है, निज़ाम के अंदर मिज़ान बैंक भी है, मिज़ान बैंक को पता है कि कौन सी लैंग्वेज चलती है, उसके अराउंड इस्लामिक बैंकिंग भी हो जाती है, उसी निज़ाम में आपको पता है कि पैसा सारा गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमने देना है, आपको पता है वो इनएफिशिएंट है, आपको पता है कि उस पैसे से उन्होंने जो ना घुमा फिरा करके सारा का सारा पैसा ज़ाया होना है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सबसे रिस्क फ्री उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो आंखें बंद करके उधर ही पैसा देंगे, ये समझिएगा बात, ठीक है। वो नहीं बैठे सोच रहे मोरालिटी, मोरालिटी क्या होती है, उनका मॉरल डिसीजन क्या होना चाहिए है, उनका मॉरल डिसीजन ये है कि जानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे रेट ऑफर कर रही है ना, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, मैं उसको परस्यू करूँगा। तो देर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न वाई एनी इंडिविजुअल, एनी स्मॉल पर्सन, $2 million कमाने वाला CEO अपनी कंपनी का, अपने बैंक का ये डिसीजन ले सकता है कि यार व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द शेयर होल्डर्स वही हम करेंगे, तो जो आम मिडिल क्लास लड़का है बैठा हुआ, और ये मैं भी बेवकूफ़ था आज से 2-3 साल पहले जब मैं मोरालिटी के खाते में मुल्क की खातिर में 4-5 चीज़ें बोलता था, मैं नहीं कह रहा कि आप मुल्क दुश्मन हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अपने दिमाग में रखें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को संभाल के रखें और اپنی زندگی بہتر کریں ملک کی زندگی خود سے بہتر ہو جائے گی. کیونکہ امیر آدمی صرف تبھی فورس ہوگا کہ یار وہ نارمل جینیون ریفارمس لے کر آئے جب وہ آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا, جب آپ بھی اس کی گیموں کو یوز کرنا شروع کر دیں گے پھر اس کو اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور ایونچولی جو بیچارہ پڑھا لکھا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس نچوڑا جاتا ہے نا اس ملک کے اندر, وہ نچوڑنا بند ہو جائے گا. تو اینی ویز ویڈیو لمبی ہو گئی ہے بہت, آج میں نے رینٹ کیا ہے. اوریجنلی میں نے سوچا تھا کہ میں ٹیکس کے اوپر بناؤں گا لیکن وہ کیا کروں, ایموشنز میں تھوڑا بہہ جاتا ہوں, بہہ گیا. بٹ اینی ویز آئی وڈ لو ٹو ہیئر یور تھاٹس اینڈ اوپینین آن دس بلو. نارملی میری ایسی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ کوئی نہیں, کبھی کبھار ایسا چلتا ہے, ہو جاتا ہے. بجٹ جب آ جائے گا تو ہم تھوڑا فیکچوئل رہیں گے اور فیکچوئل اس کے اوپر سارا بول بھی دیں گے. بٹ اینی ویز یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں. میرا نام سید مظفر الحسن زیدی ہے, آپ دیکھ رہے تھے دل کی بات, دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ سے ملتا ہوں کل کی ویڈیو میں جہاں پر ہم ٹیکس آپٹیمائزیشن کی اسٹریٹجیز کو ایکسپلور کریں گے. دیکھتے رہیے گا دل کی بات.